लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संघर्षों की स्थिति में हम ध्रुवीकरण और लोक लुभावनवाद के खिलाफ संवाद और मैत्री के साहसी निर्माता बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कांस्टेंट लेबन्स एवं चटन नागपुर में कातली कलीसिया की शुरुआत पर चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। हमने पिछले कार्यक्रम में सुना था कि गांव का दौरा करते समय फादर लेबन्स किस तरह लोगों से मुलाकात करते थे और उन्हें धर्म की बातें बतलाते थे। आज हम 12वें में फादर लेबन्स की चौथी यात्रा के बारे सुनेंगे, तो आइए अब आगे सुनते हैं। April 14, 1891 को मिशन सुपीरियर फादर ग्रोजा 3 महीनों के अंदर दूसरी बार रांची आए। इस बार भी उन्होंने कोई खुशखबरी नहीं लाई थी, अर्थात 12वें में मिशन स्टेशन खोलने की अनुमति अब भी नहीं मिली थी। फिर भी फादर लेबन्स ने दूसरी बार 12वें का दौरा करने का निश्चय किया। फादर ग्रोजा, जिन्होंने अब तक 12वें का दौरा नहीं किया था और देखने आए थे कि मिशन स्टेशन खोलने के लिए वहां क्या किया जा सकता है, वे फादर लेबन्स के साथ वहां जाने के लिए उत्साहित थे। फादर लेबन्स और फादर ग्रोजा 20 अप्रैल को रांची से निकले। दोनों ने 8 दिनों तक एक साथ बिताया। मिशन सुपीरियर ने मिशन के बारे लिखा, हम 20 अप्रैल को शाम 4 बजे निकले और करीब 10 बजे दिखिया पहुंचे। वहां से 21 अप्रैल को लोहरदगा गए और एक रात बिताने के बाद 22 अप्रैल को सुबह 6 बजे 12वें की यात्रा शुरू की। घाटियों, पहाड़ों और नदी नालों को पार करते हुए दोनों मिशनरी 25 अप्रैल को शाम 6 बजे छिछवानी पहुंचे। दूसरे दिन 26 अप्रैल को रविवार था, अतः वहां मिस्सा बलिदान अर्पित की गई, जिसमें करीब 1200 लोगों ने भाग लिया। बाद में पड़ोस के गांव से करीब 800 लोग पहुंचे। 27 अप्रैल को सुबह 8 बजे अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए वे लगभग 11 बजे बेंदोरा पहुंचे, जहां लोगों ने बड़ी खुशी से नाचते और गाते हुए उनका स्वागत किया तथा अतिथि सत्कार दिखाते हुए हाथ धोए। वहां एक रात बिताने के बाद 28 अप्रैल को वे कांसिर गए। कांसिर में करीब आधा घंटा रुकने के बाद फादर ग्रोजा तेलगांव गए, जहां फादर टेहोन और फादर वान देर केलेन से मुलाकात की। उसके बाद वे वापस रांची लौट गए, जबकि फादर लेबन्स 12वें में रह गए। मिशन सुपीरियर के लिए यह दौरा एक निरीक्षण की यात्रा थी, जिसमें फादर लेबन्स ने उन्हें अपनी पल्ली के विस्तृत क्षेत्र का दर्शन कराया, जहां स्कूल नहीं थे और कई चीजों की आवश्यकता थी। सबसे पहले उन्होंने कैथलिकों की जनसंख्या का हिसाब करना चाहा, क्योंकि अब तक उनकी संख्या का सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा था। इस तरह से पूरे मई महीने में फादर लेबन्स और उसके साथी मिशनरी ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया, 12वें और छछाड़ी के हरेक गांव के। महीना भर लगातार मेहनत करने के बाद जनगणना का परिणाम था, कांसिर में 2603, 12वें में 24301 और छछाड़ी में 8885 ने अपना नाम दर्ज कराया था, जिनकी कुल संख्या 35789 दर्ज की गई थी, जिसमें 23,000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया था। लोगों की जनगणना करने के दौरान फादर ने 1397 लोगों को बपतिस्मा दे दिया था, जिनमें से अधिकांश ख्रिस्ती माता पिता के बच्चे थे। 12वें में लंबा समय व्यतीत करने के बाद 5 जून को वे रांची लौटे। फादर लेबन्स ने 12वें में 1891 के शुरू से लेकर अब तक करीब 3 महीने व्यतीत किए थे। गले में इन्फेक्शन और लगातार खांसी ने भी उन्हें बार बार 12वें जाने से नहीं रोक सका। मई महीने में अत्यधिक गर्मी के बावजूद वे नहीं रुके। फादर ग्रोजा जो उनके साथ यात्रा पर गए थे गर्मी से बहुत परेशान थे। गर्मी के बावजूद फादर लेबन्स बड़ी तेजी से काम करते थे जिसके कारण उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। फादर लेबन्स के रांची लौटने पर मिशनरी उन्हें इस हालत में देखकर हैरान नहीं हुए बल्कि आश्चर्य से सिर हिला रहे थे कि इतने लंबे समय तक फादर लेबन्स के स्वास्थ्य ने उनका साथ दिया था। विगत 6 महीनों में वे 4 महीने टूर में बिताए। गर्मी ऋतु में चिलचिलाती धूप में वे हमेशा घोड़े पर सवार होकर दौरा करते थे। एक दिन में 8 से 10 बार भाषण देते थे। कई सप्ताहों तक बाजार से लेकर रूखा सूखा भोजन करते थे और कई रातें पेड़ के नीचे बिताए। उन्होंने कहा, इस तरह की व्यवस्था से कौन बच सकता था। फादर लेबन्स की द्विधा पर अन्य फादरों की भी सहानुभूति थी। फादर लेबन्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी चिंता थी 35,000 ख्रिस्तों की देखभाल करना जो परिपक्व नहीं हो पाए थे और उपेक्षित हो रहे थे, किंतु ख्रिस्त विश्वास में सच्चे थे। उन्होंने उदार उत्साह, पूर्ण दृढ़ता तथा आविष्कार कुशलता के द्वारा उन्हें एक साथ रखा और पुरोहित के बिना मिस्सा अर्पित करने की व्यवस्था की। 12वें में मिशन स्टेशन खोलने की महाधर्मदर्श की अनुमति में देरी ने फादर लेबन्स और अन्य मिशनरियों को अधिक अधीर बना दिया था, पर वे लोगों को इस तरह नहीं छोड़ सकते थे जिन्हें लगातार देखभाल की अति आवश्यकता थी। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स एवं छोटानागपुर मिशन की शुरुआत पर एक चर्चा सुन रहे थे। इस पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका हॉस्टल। लेखिका है अंतरा करवड़े। श्रोताओं, आजकल के लड़के लड़कियां यह मानते हैं कि घर में पढ़ाई लिखाई ठीक ढंग से नहीं हो पाती, इसलिए वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करना बेहतर समझते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों के भविष्य को संवारने और उन्हें अपने जीवन में लक्ष्य हासिल करने के लिए हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने की अनुमति दे देते हैं। हालांकि माना जाता है हॉस्टल में बच्चे एकाग्र होकर घर परिवार की चिंता से दूर रहकर अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाते हैं। हॉस्टल वार्डन और माता पिता के सही निर्देशन में बच्चों के व्यक्तित्व का भी विकास होता है। कभी कभी एकल माता या विधुर पिता अपने बच्चे को हॉस्टल में रखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वे जानते हैं कि घर का एहसास हॉस्टल में नहीं मिल सकता, फिर भी बच्चा अपने जीवन में कुछ करे, आगे बढ़े, इसलिए बच्चों को अपने से दूर हॉस्टल में रहने के लिए भेज देते हैं। छोटी उम्र में बच्चा घर या अपनी माँ या पिता की दूरी को सह नहीं पाता। उसे लगता है कि हॉस्टल भेजकर उसे सजा दी जा रही है। पिता के प्रति उसका नजरिया नकारात्मक हो जाता है। वह पिता को एक कठोर व्यक्ति के रूप में देखता है। जीवन भर इसी पूर्वाग्रह में जीता है। अतः हॉस्टल भेजने के बाद भी माता पिता को अपने बच्चों से संपर्क बनाए रखना चाहिए। उसकी हर जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ समय समय पर मुलाकात कर उन्हें महसूस कराना चाहिए कि वे उसे प्यार करते हैं। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं अंतरा करवड़े की लिखी नाटिका हॉस्टल।
फिर से वही ताना, मैं कब तक सहन करूंगा ये सब।
अरे पराग, अचानक क्या हो गया, इतने गुस्सा होने लगे?
पापा का फोन आया था। फिर वही बात है, तुम नहीं समझ पाओगे बेटा, उस समय तुम हॉस्टल में थे। अरे तो क्यों रखा था मुझे अपने से दूर, माँ तो मिली नहीं बचपन से, बाबूजी भी कभी अपने नहीं हो पाए।
देखो पराग, उनकी भी कोई ना कोई मजबूरी होगी ना, कोई यूं ही तो अपने बच्चे को खुद से अलग नहीं कर देता।
देखो प्रीति, मैं अब इन सारी बातों को लेकर बहस करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे एक बात बताओ कि क्या ढेर सारा पैसा दे देना ही आपके बच्चे के लिए काफी है? आज मैं चाहूं तो मैं भी अपनी श्रुति को इस हॉस्टल में रख सकता हूं, लेकिन मैं जानबूझकर अपनी बेटी से उसका बचपन नहीं छीना चाहता।
मान लिया पराग कि तुम्हारे मन में पापा के इस निर्णय को लेकर कड़वाहट है, लेकिन तुमने कभी तो उन्हें समझने की कोशिश की होती। अरे पत्नी के नहीं रहने के बाद घर में रहकर अपना बिजनेस भी संभालना और बेटी को भी बड़ा करना, ये सब आसान लगता है क्या तुम्हें? और कल को यदि वे तुम्हें घर में नौकरों के सहारे छोड़ देते तो तुम्हारी क्या परवरिश हो पाती है, तुम खुद ही जानते हो।
पापा, मम्मी, कहाँ है आप?
आओ श्रीति बेटा, क्या हुआ, बड़ी खुश दिख रही हो।
हाँ पापा, मुझे तो वाकई मन चाहे मुराद मिल गई है। पता है हमारे कॉलेज में ही अब यूके स्कॉलरशिप की एग्जाम्स होने वाली है। इसका मतलब ये पापा कि बार बार मुंबई और दिल्ली जाने की अब कोई जरूरत नहीं है मुझे।
लेकिन तुम ये स्कॉलरशिप की परीक्षाएं क्यों देना चाहती हो बेटी?
अरे पापा, बात वो नहीं है। देखो हमारे शहर में भी अच्छे कॉलेज हैं, लेकिन आपकी बेटी को सिंपल पढ़ाई थोड़ी करनी है, उसे तो स्पेशल स्टडीज करना है। और इसके लिए तो देश से बाहर जाना ही होगा ना पापा। अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लीजिए अब आप। ये श्रुति आपका बहुत सारा रुपए खर्च कराने वाली है अब।
तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ किया है बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी, बस एक बात का ध्यान रखना, जो भी परीक्षा दो मन लगा कर देना और उसमें सफल होकर दिखाना, ठीक है?
बिल्कुल दादाजी जैसे बोल रहे हैं पापा आप, है ना मम्मी? चलो मैं तो चलूं। बाय पापा, बाय मम्मी।
बाय बेटे, अपना ख्याल रखना।
मुझे तो यकीन ही नहीं होता अपनी श्रुति अचानक कितनी बड़ी हो गई, अपने निर्णय खुद लेने लगी है। ये वही श्रुति है जो बगल की गली से साइकिल पर इसलिए नहीं जाती थी क्योंकि वहाँ पर वो कटखना कुत्ता बैठा होता था।
बेटियाँ बड़ी जल्दी बड़ी हो जाती हैं पराग। एक दिन यही नन्ही लाल सुर्ख जोड़े में हमें बिलखता छोड़कर चली जाएगी अपने पति के साथ, फिर आखिर वो खुश रहे यही सोचकर मन को दिलासा दे सकते हैं ना?
सही है तुम्हारा कहना, बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ करूंगा, उसे महंगे से महंगे कॉलेज में एडमिशन दिलवाऊंगा, उसकी शादी ऐसे धूमधाम से करूंगा कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी।
मुझे लगता है पराग, पापा ने भी तो आपके बारे में यही सोचा होगा। आपको हॉस्टल में रखकर कम से कम वो आपके लिए इतनी दौलत तो जमा कर पाए। आज हमारे पास है ही क्या उनके दिए हुए इस मकान के अलावा?
लेकिन तुम्हें नहीं लगता प्रीति कि एक पिता होने के नाते ये उनका धर्म था? आज अगर मैं श्रुति की पढ़ाई के लिए पैसा लगाने को तैयार हूँ तो वो क्या इसलिए कि वो बड़ी होकर मेरा एहसान माने?
पता नहीं पराग, लेकिन तुम्हें ये तो मानना ही होगा कि कई बार ऐसी परिस्थितियाँ इंसान के सामने आ जाती हैं कि उसे अच्छा नहीं लगते हुए भी अपनी औलाद के भले के लिए कुछ निर्णय लेने ही होते हैं।
अब चाहे जो भी हो प्रीति, लेकिन अपनी औलाद से बढ़कर तो कुछ नहीं होता।
पता नहीं पराग, तुम कब समझोगे?
मैं देखता हूं। क्या ये क्या कह रहे हैं अंकल? अभी थोड़ी देर पहले तो मुझसे फोन पर बात हुई थी, अचानक क्या हो गया? नहीं नहीं, मैं अभी निकल रहा हूं, आप वहीं रहिए। ये क्या हो गया? मैं तो एकदम अनाथ हो गया, ये क्या हो गया?
अरे परा, क्या हो गया? किसका फोन था?
दिनेश अंकल का फोन था प्रीति। पापा, पापा को हार्ट अटैक हुआ है और वो हमें छोड़कर चले गए। प्रीति,
ये तुम क्या कह रहे हो? परक, पापा अचानक? नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ। परक, उनसे तुम्हारी आखिरी बातचीत थी वो, और वो भी तुमने सही तरीके से नहीं की। नहीं परक, परक ये ठीक नहीं हुआ, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है।
दुख तो मुझे भी हो रहा है प्रीति, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? मुझे क्या पता था कि पापा हमें ये छोड़कर चले जाएंगे। अब तैयारी करो, और हाँ, श्रुति के दोस्त के घर फोन कर देना, वो हमारे साथ ही चलेगी।
हाँ।
अब चलो।
पापा, मम्मी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आप दोनों को ऐसे छोड़कर जाना, लेकिन ये कोर्स करना मेरा सपना है।
तुम क्यों ऐसा सोचती हो कि तुम हमसे दूर जा रही हो? हमें तो खुशी इस बात की है कि 5,000 स्टूडेंट्स में से 2 का सिलेक्शन हुआ है, और उन 2 में से 1 हमारी प्यारी श्रुति है।
देखो श्रुति, एक बात हमेशा याद रखना, तुम हमारे पास हो या दूर, तुम्हारे लिए कभी भी कुछ भी करने के लिए हम तैयार हैं।
मम्मी, आप ऐसा क्यों समझती हैं कि मैं आपसे दूर जा रही हूँ? ये तो मैं भी जानती हूँ कि मेरे आपसे दूर जाने के कारण आप दोनों को भी उतना ही दुख हो रहा होगा, लेकिन आपकी ही इच्छा है ना कि मैं पढ़ लिख कर अपना मुकाम हासिल करूं, तो इसके लिए हमें थोड़े दिनों के लिए ऐसे दूर रहना जरूरी है।
चलो बेटा, अब फ्लाइट का समय होने लगा है, अंदर जाकर दादाजी की तस्वीर को प्रणाम करो, मुझे यकीन है कि आज वो होते तो बड़े खुश होते।
चलो बेटा, अब जल्दी करो श्रुति।
ओके मम्मी, बाय पापा, मैं फोन करती रहूंगी, आप लोग अपना ख्याल रखना।
बाय
बाय बेटा। ये क्या पराग, तुम्हारी आंखों में आंसू? श्रुति को तो वैसे भी हमें एक दिन हमेशा के लिए छोड़कर जाना ही है। अरे बेटियां कभी अपनी हुई हैं, अपने आप को संभालो परक।
जानता हूं प्रीति, बेटियां कभी अपने घर में नहीं रहती, ये भी चली जाएगी कुछ दिनों के बाद, लेकिन जो हमेशा के लिए चले गए उनकी तकलीफ कैसे दूर करूं?
तुम क्या कहना चाहते हो परक?
प्रीति, मैं जिंदगी भर पापा से इसलिए नाराज रहा कि उन्होंने मुझे अपने पास नहीं रखा, हॉस्टल भेज दिया। मेरे मन में हमेशा से यही विचार रहा कि हॉस्टल में अपने बच्चों को भेज देने वाले माता पिता बड़े निष्ठुर होते हैं, लेकिन आज मैंने भी अपनी बेटी को हॉस्टल भेज दिया ना, मैं कोई निष्ठुर पिता तो नहीं हूं ना?
देखो पराग, मान लिया कि तुम पापा से हमेशा नाराज रहे और इसके चलते उनके साथ तुम्हारा रिश्ता कड़वाहट से भरा रहा, लेकिन आज श्रुति के कारण ही सही तुम अपने मन को साफ तो कर पाए। पराग, आज भले ही पापा नहीं है, लेकिन श्रुति को हॉस्टल भेजकर तुमने उनसे अपने किए व्यवहार की माफी तो मांग ही ली है ना?
काश कि पापा मुझे माफ करते।
हॉस्टल, अभी अभी आपने यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे अर्पणा सिंह, संदीप दुबे और अंतरा करवड़े। इंदौर सत्य प्रकाशन की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।